और हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया प्रभुपदा जय प्रभुपदा विष्णु पाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंहदेव की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री देवदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेम ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल devotees, all glories to Sunil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda.
Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda.
Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय आदि लीला अध्याय 14 अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं और प्यार संख्या 6। बाल लीलाएं आगे प्रभुर उत्तान शयन। पिता माता देखाइला चिन्ह चरण। बाल लीलाएं आगे प्रभुर उत्तान शयन। पिता माता देखाइला चिन्ह चरण। बाल लीलाएं आगे प्रभुर उत्तान शयन। पिता माता देखाइला चिन्ह चरण।
Yeah.
बाललीला आगे प्रभु तन शयन
बाललीला आगे प्रभु तन शयन
पिता माता देखिला चिन्ह चरण
पिता माता देखिला चिन्ह चरण
वैष्णो देविया शब्दार्थ बोलिए बाल लीलाएं बाल लीलाओं में आगे सर्वप्रथम प्रभुर महाप्रभु की उत्ताना करवट लेना शयना लेटे हुए पिता माताएं माता पिता को दिखाईला दिखाया चिन्ह चिन्ह चरण चरण कमल के अनुवाद मेरे पीछे बोली अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के चिन्ह दिखलाए तो अनुवाद में जो है जो बताया गया है आप लोग समझ गए बिस्तर में लेटे लेटे महाप्रभु ने सबसे पहली जो लीला दिखलाई वो क्या है ऊपर से नीचे पलट गए मतलब पेट ऊपर होता है पेट नीचे होती है जमीन में तो उल्टे हो गए यही मतलब ना है कि मतलब पेट जमीन में हो गया और पेट ऊपर हो गई है
पेट के बल सो गए
पेट के बल उत्ता पलट गए तो सबसे पहली बाल लीला है बालक की है बाल गौरांग बालक गौरांग की सबसे पहली जो बाल लीला है वो ये है कि ये बालक जो है लेटे लेटे चित्त से पट हो गया चित्त से पट हो गया और चित्त से पट हो करके इसने अपने चरण चिन्हों को दिखाया माता पिता को कि देखो मेरे चरण चिन्ह मैं कौन हूँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद की श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस कथन की पुष्टि करते हैं कि यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण अपना सची माता के पुत्र बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं गजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैला सही सची पुत्र और कोई नहीं बल्कि माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र हैं और नित्यानंद प्रभु वही बलराम है बलराम है लन्यताई क्षमा करना मैं जो है तात्पर्य वो पिछला तात्पर्य पढ़ दिया है ये तात्पर्य तो पिछले पेज का मैंने पढ़ दिया क्षमा करना तो इस प्यार का जो तात्पर्य है ऊपर मुख किए हुए बिस्तर पर लेटने को या पीठ के बल लेटने के लिए भी उत्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रभुपाद क्या करें उत्तान शयन दो अर्थ है प्रभुपाद क्या बता रहे हैं उत्तान शयन का दो अर्थ है उत्तान उत्तान का मतलब क्या है चित्त लेटना उत्तान शयन शयन माने सोना शयन करना लेटना उत्तान का मतलब क्या हुआ हाँ पेट ऊपर और पेट नीचे उत्तान उत्तान शयन का ये भी अर्थ है और प्रभुपाद क्या कहना दूसरा भी अर्थ है क्या है ऊपर मुख्य बिस्तर की ओर लेटने को या पीठ के बल लेटने के लिए अच्छा एक ही मतलब है उत्तान शब्द है ना आगे प्रभु लिखते हैं कुछ पुस्तकों में उत्थान पाठ मिलता है जिसका अर्थ है उठ खड़ा होना उत्थान शयन है ना उत्थान की जगह उत्थान तो उत्थान का मतलब क्या हुआ उठना उत्थान शयन का क्या मतलब हुआ दो लीलाएं एक तो उठने की दूसरी लेटने की है ना तो वो उठते हैं और गिर जाते हैं उत्थान शयन है ना जिसमें मतलब दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि बालक जो है उठने की कोशिश करता है उत्थान इसको उत्थान लेकिन गिर जाता है हैं तो शुरू में बच्चा जो है हमेशा गिरता है जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो गिरता जरूर गिरेगा है ना। तो बालक जो है उठता है और फिर गिर जाता है, या कभी दीवार के सहारे खड़ा होने की कोशिश करता है उत्थान, और फिर दीवार के सहारे ही गिर जाता है बालक, शयन उत्थान शयन, है ना। तो मेरे पिता माता को ये लीला दिखाई है, बहुत आनंद है इस लीला में, माता पिता को आनंद दे रहे हैं भगवान, है ना। तो उत्थान शयन का एक मतलब ये भी है कि उत्थान, उत माने ऊपर की ओर, है ना। तो ऊपर की ओर जब बालक जो है लेटा होता है तो उसकी आंखें छत की ओर होती हैं और पैर उछालता है, अपने पैर उछालता है, है ना। कोई बच्चा वो उल्टा नहीं लेट सकता, यानी पेट के बल नहीं लेट सकता, वो पीठ के बल लेटा रहता है और पैर उछालता रहता है ना। ये साइकिल चलाता हूँ ऐसे, पैर उछालता है ना। तो यहाँ पर जो है कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं कि उत्तान शयन पिता माताएं देखाई ले चिन्ह चरण, बालक जो है अपने माता पिता को अपने चरण की चिन्ह दिखा रहा है कि देखो मैं कौन हूँ, मैं कौन है। आगे प्रभुपाद देखते हैं तात्पर्य में, महाप्रभु अपने बाल लीलाओं में दीवाल पकड़कर खड़े होने का प्रयत्न करते थे, लेकिन जिस तरह सामान्य बालक गिर पड़ता है उस तरह महाप्रभु भी गिर पड़े और पुनः अपने बिस्तर में जा लेटे। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो बहुत प्यारी लीला है और ये जो लीला है ये क्या है, बहुत मतलब सजीव है, बड़ा सजीव वर्णन है। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखने, बड़ा सजीव वर्णन है, मतलब आंखों में जो है आ जाती है लीला, आंखों के सामने ये दृश्य आ जाता है कि बालक जो है मतलब क्या है। सबसे पहली लीला बालक की, यहाँ सबसे पहली लीला यानी जन्म के बाद, जन्म की लीला के बाद बाल लीला, जन्म लीला तो है ही है, जन्म लीला के बाद बाल लीला, तो बाल लीला है, बाल लीला में सबसे पहली लीला ये है, है? उत्तान शयन, है ना, उत्तान, है ना। तो उत्तान, उत्तान का मतलब ऊपर उठा करके, जैसे उत्तान पाद, ध्रुव महाराज के पिता का नाम क्या है, उत्तान पाद, उत्तान पाद का मतलब क्या है, जिसका पैर ऊपर उठा हो, ऊपर की ओर पैर उठाए, उत्तान पाद बोलते हैं, है ना। तो प्रत्येक बच्चा जो है उत्तान पाद होता है, लेटा लेटा अपने पैरों को ऊपर उठाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तान पाद, पैर ऊपर उठाए, है ना, उत्तान पाद, है ना। तो उत्तान शयन, तो बालक जो है लेटा है बिस्तर में और अपने पैरों को माता पिता को दिखा रहा है, लेकिन क्या ये भाव है बालक का कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, देखो मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मेरे पैरों के चिन्हों को देखो, क्या ये दिखा रहा है बालक, नहीं ये नहीं दिखा रहा है। माता पिता को ये बताता है कि मैं तुम्हारा पुत्र जन्म जन्म का हूँ, है ना। तो पहले मेरा संबंध है पिता पुत्र का है, माता पिता का और पुत्र का है, और बाद में ये भी समझो कि मैं ईश्वर हूँ। तो भगवान जो है अपना जो ऐश्वर्य दिखाते हैं माता पिता को, तो इसलिए नहीं दिखाते कि माता पिता डर जाएं हैं और अपना पुत्र ना मानें और मेरी आरती करें पूजा करें, भगवान नहीं चाहते। भगवान अपने माता पिता को इस प्रकार का ज्ञान नहीं देना चाहते हैं कि तुम जो है भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत कि तुम अपना मुझे पुत्र समझो, ये नहीं है भगवान का भाव। भगवान का भाव क्या है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पहले तुम्हारा पुत्र हूँ और बाद में ईश्वर, बाद में ईश्वर हूँ। तो भगवान जो है मतलब ये संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। तो इसलिए इस ज्ञान को जो है भगवान देते भी हैं माता पिता को और फिर भुला भी देते हैं, क्योंकि उनको प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, वात्सल्य चाहिए, है ना। नहीं तो कौन उनको प्रेम देगा, कौन उनका माता पिता हो सकता है, उनके माता पिता है ही नहीं कोई। नहीं उनको चाहिए, वो भूखे हैं, है वात्सल्य, स्नेह के भूखे हैं, स्नेह के भूखे हैं, है इसलिए बालक जो है बालक की चेष्टाओं से जो है अपने पैर उछाल रहा है और जो है अपने चरण के चिन्ह दिखा रहा है। तो चरण के चिन्ह जैसे ब्रह्मा जी, कपिल भगवान का जब जन्म हुआ था तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने आकर के हाथ पैरों के चिन्हों को देख करके निश्चित किया कि ये भगवान है, कपिल भगवान, कपिल देव को कि भगवान है, साक्षात भगवान है, आपके पुत्र बने, है ना। तो चरण के चिन्ह बताए गए हैं कि नौ चिन्ह भगवान के दाहिने पैर में है। पहला है ऊर्ध्वरेखा, ऊर्ध्वरेखा सीधी रेखा, ऊर्ध्वरेखा। दूसरा है अष्टकोण। तीसरा है स्वस्तिक। चौथा है जामुन या जम्बू फल। पांचवा है जव, जव यव बोलते हैं। छठवा है वज्र। सातवां अंकुश। आठवां केतु या ध्वजा। और नवा है पद्म यानी कमल। और बाएं पैर में सात चिन्ह है। पहला है त्रिकोण, दूसरा कलश, तीसरा गोपद गाय का खुर है गोपद, चौथा धनुष, पांचवा मीन या मत्स्य, और छठवा अर्धचंद्र, और सातवा व्योम या आकाश। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर के कितने हुए, नौ और सात कितने, सोलह, है ना। तो सोलह चिन्ह है। तो माता पिता को बालक जो है अपने पैरों के चिन्ह दिखा करके ये नहीं बताना चाहता है कि मैं पहले ईश्वर हूँ और बाद में तुम समझो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ये नहीं, बल्कि भाव ये है कि पहले मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो मुझे पुत्र मान करके मेरे से स्नेह करो। लेकिन सौभाग्य तुम्हारा कितना है, सौभाग्य तुम्हारा कितना है कि तुम्हारा पुत्र ईश्वर है, ईश्वर तुम्हारा पुत्र है, ये नहीं। साक्षात ईश्वर जो परमेश्वर हैं है? वो तुम्हारे पुत्र हैं है? ये नहीं, ये नहीं कि साक्षात परमेश्वर तुम्हारे पुत्र बन गए हैं, ये नहीं। क्योंकि इसमें फिर वो भय रहता है, थोड़ा संकोच रहता है कि साक्षात भगवान है, मेरे पुत्र बन गए, लेकिन तो भी भगवान तो है साक्षात, तो ये नहीं। तो भगवान जो है माता पिता को कोई भय नहीं पैदा करना चाहते हैं कि देखो साक्षात भगवान हमारे पुत्र बन गए, आश्चर्य विस्मय, साक्षात भगवान हमारे पुत्र बन गए, ये नहीं दिखाना चाहते हैं भगवान। बल्कि ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र भगवान है, तो पहले कौन है, ये तुम्हारा पुत्र है, और बाद में भगवान। तो पुत्र का जो संबंध है वो बहुत क्या है, बहुत दृढ़ है ना, या इसको कहेंगे आधार। पुत्र का संबंधी जो है मतलब सबसे प्रबल। तो माता पिता को जो है भगवान ये ज्ञान जो दे रहे हैं तो वो ज्ञान उनके सौभाग्य की सूचना देने के लिए दे रहे हैं। है? जैसे कोई व्यक्ति सोचता है भाई मेरा पुत्र है, लेकिन देखो बीए हो गया, एमए हो गया, या जज बन गया, लेकिन पहले मेरा पुत्र है, फिर बाद में वो जज बन गया, है ना सुप्रीम कोर्ट का, तो जो भी हो, है ना, तो बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन पहले तो हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, वो व्यक्ति यही सोचता है ना। उसी प्रकार से माता पिता को भगवान क्या दिखाना चाहते हैं कि पहले मैं तुम्हारा लड़का हूँ और बाद में कुछ समझो कि मैं जो भी हूँ बाद में हूँ, है ना। हरि बोल, ये भाव है ना। तो आज के जो है प्यार में इतनी बात है जो हम बताना चाहते थे, लेकिन चूंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो हम लोगों ने अभी तक कार्तिक की चर्चा नहीं की, तो इसलिए मैंने विचार किया कार्तिक के महात्म्य में बहुत सी कथाएं हैं, तो उनमें से एक कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हो सकता है आपने सुनी भी हो, तो जितने बार सुने उसमें उतना ही रस मिलेगा। तो इसमें ये मत सोचिए कि सुनी है तो आप सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे समाचार पत्र एक बार पढ़ लिया तो उसको फिर फेंका जाता है, बेकार हो गया, ऐसा नहीं है ये। लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों ने ना सुनी हो ये कथा। तो इसमें सत्यभामा और कृष्ण का संवाद है। सत्यभामा भगवान कृष्ण से बहुत बातें पूछती हैं और भगवान कृष्ण सत्यभामा को बहुत सी कथाएं सुनाते हैं, है ना। तो एक कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है, गुणवती सत्यभामा ने अपने बारे में पूछा कि मैं कैसे आपकी पत्नी बनी, मैंने क्या पिछले जन्म में कर्म किया। हरि बोल, आंखें खोलिए, जीव जागो। हरि बोल, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बताया, सत्यभामा ने पूछा भगवान कृष्ण से कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, मैंने क्या कर्म किया जो कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या आपकी पत्नी को भी पटरानी है ना, आपके साथ गरुण में बैठ करके चलती हूँ, स्वर्ग आदि लोगों की यात्रा भी करती हूँ आपके साथ गरुण में बैठ करके, है ना, इतना सौभाग्य तो आपकी और दूसरी पत्नियों को भी नहीं प्राप्त हुआ जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो भगवान ने जो है सत्यभामा को बताई उनकी पिछले जन्म की कथा, बहुत सुंदर कथा है, लेकिन उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक और कथा सुना रहा हूँ, तो ये बहुत ही अद्भुत है। तो सत्यभामा मतलब प्रश्न करती हैं, इसके पहले एक और भी कथा सुनाई थी भगवान ने जिसमें कि धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, तो उसको राक्षसी मिली थी जो कि पिछले जन्म के पापों से उसको राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ, और वो जब धर्मदत्त ब्राह्मण के सामने आई तो खाने के लिए आई थी, लेकिन धर्मदत्त ब्राह्मण के हाथ में जो थाली थी पूजा की जिसमें तुलसी का जल था, फूल थे, वस्त्र सब होता है ना आरती की प्लेट में, तो वही फेंक के मार दिया क्योंकि इमरजेंसी में अपनी रक्षा के लिए वही फेंक के मार दिया, तो तुलसी के जल से उसका स्पर्श हो गया तो उससे उसको पिछले जन्म की सब स्मृति याद आ गई कि मैंने पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म किए जिसके कारण मुझे ये प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ है, और अगले 3 जन्मों के लिए मुझे और निश्चित हो चुका है कि चमगादड़ी बनूंगी और फिर सूकरी बनूंगी फिर बिल्ली बनूंगी। तो वो जो है ब्राह्मण से कहती कि अब आप जो है मेरी रक्षा करो, क्योंकि तो आपने तुलसी के जल से मुझे इतना पवित्र कर दिया है कि मुझे अब याद आ गया है पिछले जन्म के मेरे पाप, और अब जो है मेरी दुर्दशा 500 साल से मैं प्रेत के शरीर में भूखी प्यासी भटक रही हूँ, और कब तक चलेगा ये प्रेत का शरीर, और फिर 3 और योनियां मुझे भोगनी पड़ेंगी, मेरी आप रक्षा करिए। तो उसने फिर अपना जो है ब्राह्मण ने जन्म से लेकर के अभी तक कार्तिक का जो व्रत किया था उसका आधा पुण्य दिया, और उस आधे पुण्य के प्रभाव से उसका शरीर वो केवल ये 3 योनियों से पापों से मुक्त नहीं हुई बल्कि वैकुंठ में जाने के लिए उसको शरीर प्राप्त हो गया, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, और वैकुंठ से विमान आया और पुण्यशील और सुशील नाम के जो विष्णु पार्षद हैं उसको लेने के लिए आए। हरि बोल। तो इस बात से जो है सत्यभामा ने फिर प्रश्न किया भगवान से कि क्या ऐसा भी होता है, कि ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने पुण्य किसी को मतलब दे दे और किसी के पुण्य से कोई व्यक्ति जो है लाभ उठा ले, क्या ऐसा भी होता है? तो इसके उत्तर में भगवान ने एक और कथा सुनाई, वो भी कार्तिक के महात्म्य की कथा है, बहुत अद्भुत कथा है, इसको आप सुनिए बड़े ध्यान से। तो श्री कृष्ण बोले वो जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप कर्म वाला अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, ब्राह्मण था लेकिन ब्राह्मण के कर्म से रहित और पाप कर्म करने वाला ब्राह्मण था। कहां पर? उज्जैन, उज्जैन में था। पुरावंती पुरे कश्चिन विप्रयासी धनेश्वर ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट पाप कर्म सुदुर्मति ही। वो रस कंबल चर्म का व्यापार करता था, चर्म माने चमड़ा, बहुत बदबू आती चमड़े में है ना, तो रस कंबल और चमड़े का व्यापार करके जीविका करता था, और चोर का संग वेश्या गमन और सुरापान करता था सदा, सुरापान यानी शराब पीता था सदा, वेश्या गमन चोरों का संग करता था, उसका मन संताप युक्त रहता था, प्रसन्नता नहीं आती चेहरे में, हमेशा गुस्सा चेहरे में रहता है ना, तो पापी व्यक्ति के जो है चेहरे में गुस्सा रहता है। रस कम्बल चर्माध्याय सो सत्यानत वृत्ति कहा सुरापान युक्त संतप्त मानस। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के लिए देश देशांतर में फिरता हुआ माहिष्मती नाम की नगरी को गया। देशान देशांतरम गच्छन क्रय विक्रय कारणां माहिष्मतीं पुरीं आगात कदाचिन साधनेश्वरः। महिष राजा द्वारा बसाई गई थी, इसी से उसका नाम माहिष्मती पड़ा, पापों का नाश करने वाली नर्मदा नदी ही परीक्षा हो रही थी उस नगरी के चारों तरफ, परिखा माने घेरने वाली नदी से घिरी हुई है माहेश्वरी नगरी। कौन सी नदी से? नर्मदा, नर्मदा नदी से घिरी है। महेश्वरेण कृता पूर्वं तस्मान् माहेश्वरी सा यस्या वप्रगता भाति नर्मदा पाप नाशिनी। वहां धनेश्वर अनेक गांव से आए हुए कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर एक महीना वहां रहा। बहुत पापी था लेकिन वो एक महीना वहीं पर रहा। वो एक संयोग की बात बन गई कि कार्तिक के महीने में वो चला गया और पूरा महीना उसने बिताया वहां, है ना। उसका कोई इरादा नहीं था कि कार्तिक का जो है कुछ फायदा समझता था, वो ऐसा कुछ नहीं समझता था। वो एक महीना वहां रहा। कार्तिके व्रतनस्तत्र नाना ग्राम गता नरान सदृष्ट्वा विक्रयम कुर्वन मासमेकम् वाससा। तो अपना जो है वो व्यापार करते हुए एक महीना बाहर रहा। उसने सोचा अच्छा है मौका, यहाँ भीड़ है काफी, मेला लगा हुआ है, तो अपना सामान बेचूं। तो अपना सामान बेचने के लिए वो जो है वहां पर रहा। और बहुत गाँव से, कई गाँव से लोग जो है आए हुए थे कार्तिक व्रत करने के लिए, तो वहां पर निवास करते थे वो लोग। वो माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण करता था। नहाकर और पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वो देखता था। सनित्यम नर्मदा तीरे भ्रमण विक्रय कारणा दर्श ब्राह्मण स्नातान जप देवार्चन स्थितान। देखता ही था, लोगों को जप करते देखता था, पूजा करते देखता था। कोई पुराण पढ़ते थे, कोई पुराणों के सुनने में लगे थे। विष्णु के नृत्य गान और बाजा आदि करने में लगे थे, बजाने में और सुनने में लगे हैं। काश्चिन पुराणम पठता काश्चिन चास्त्रवणे रतान नृत्य गायन वादित्रय विष्णु श्रवणे तत्परान। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित और तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुयुक्त मन होकर देखा। विष्णु की मुद्रा से अंकित यानी विष्णु के चिन्ह है, ये शंख है, चक्र है, शरीर में लगाते हैं ना गोपी चंदन से, हम लोग तो वो धूपपुंड तिलक लगाते हैं, तो वो देखता था लोगों को। विष्णु मुद्रांकितान कांश्चिन माला तुलसी धारिणां ददर्शे कौतुकाविष्टः तत्र तत्र धनेश्वरः। तो जब देखता था तो कौतुक युक्त होकर के देखता था, मतलब बड़े आश्चर्य के साथ देखता था, कुछ नया हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ कौतुक था, मतलब कुतूहल था, जिज्ञासा थी, है? तो बड़ा मतलब उसको आश्चर्य लग रहा था जैसे वो देखता था, है ना। इसमें कितना बड़ा फल है ये देखो। आप जो है किसी भक्त को कीर्तन करते देखते हैं, पूजा आरती देखते हैं पुजारी की, तो किस भाव से देखते हैं? अगर आप कौतुक युक्त मन से देखते हैं, आश्चर्य के समान देखते हैं, तो आपको जो है कितना फल मिलता है ये समझना है, है ना। अगर आप प्रसन्न होते हैं भक्तों को देख करके, उनके कीर्तन को देख करके, तो आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो ये जो है मतलब बताया गया है, तो इस तरह से देखने से भी आपको जो है वो फल प्राप्त हो जाता है। आप कुछ नहीं करते हैं, केवल देखते हैं तो भी, है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इसका जो है फल है। तो कौतुक युक्त मन से वो देखता रहा पूरे महीने कार्तिक के महीने। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन स्पर्श और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। वैष्णवों का स्पर्श प्राप्त होता था, बातचीत करता था, है ना। तो ये लोग पूछते थे भाई ये किस भाव का है, ये सामान किस भाव, तो इसमें भी जो है वो बातचीत करता था, तो विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। नित्यं परिभ्रमन तत्र दर्शन स्पर्श भाषणां वैष्णवा नाम तथा विष्णोर नाम संस्मरणम लभन। एक महीना रहकर धनेश्वर कार्तिक की पूर्णिमा को उसने भक्ति सहित हरि का जागरण देखा। एवं मासम मिथदा सोत है कार्तिकोद्यापने विधि क्रीमाणम दर्शा सो भक्त्या जागरणम हरे। तब सूर्य अस्त थोड़े के समय दीप दान की विधि भी धनेश्वर ने देखी। क्या हो रहा है? अरे बोल, अरे बोल, देख रहा है धनेश्वर, क्या देख रहा है? हरि जागरण भी देख रहा है, दीपदान, कुछ लोग सो रहे हैं, वो सबका देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, वो देख रहा है ना। देखने में कितना लाभ है और सोने में नुकसान ही नुकसान है, सोइए नहीं। तोर्कास्तमये चैव दीपोत्सव विधिं तदा क्रीमालं दर्शासौ प्रीत्यर्थनं त्रिपरयति सः। तदनंतर पूजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था, सब जगह घूम घूम करके सब सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। उसी समय काले सांप ने काट लिया, किसको? उसको काट लिया और वो व्याकुल होकर गिर पड़ा। तथा पूजा दिकम पश्यन् ब्रह्म साधनेश्वर तावन् कृष्णाहिना दष्टो देवला सापपात। कुछ क्षण बाद उसे गिरा हुआ देखकर कृपायुक्त हो बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया, उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। वैष्णव है, क्या करेंगे, वो तो अपना काम करेंगे। वैष्णव के बीच में वो गिर गया तो सब घेर करके वहाँ उसको जो है मतलब नाम सुना रहे हैं, तुलसी युक्त जल डाल दिया उसके मुंह में। जनास्तम पतितम वीक्षय परिबम्ब्रो कृपान्विता तुलसी मिश्रतम तोयम तन्मुखे शिशिचुस्तदा। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई, उसका शरीर छूट गया। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए संयमी नाम की यमपुरी को ले गए। यमराज के दूत, यमराज के दूतों को तो पहले से जो निश्चित था उस तरह से उनको काम करना है, और अभी कुछ हुआ तो उसका उन्हें पता नहीं है। यमदूतों को तो पहले से जो निश्चित हो चुका है उस आदेश के अनुसार वो आए, उसको बांधा और मारते हुए उसको यमपुरी ले गए। देहं परित्यक्तं तं बद्ध्वा यमकिंकरा ताडयन्तः कसाघातैर् निन्यो संयमनीं रुसां। चित्रगुप्त ने उसे देखकर जो बालकपन में दुष्कर्म किए थे उस समय उन सबों को यमराज के सामने पढ़कर के सुनाया। पापी को जब खड़ा किया जाता है यमराज के सामने तो उसको सफाई देने का अवसर नहीं दिया जाता है कि सफाई दो तुम, या कोई वकील नहीं उसको दिया जाता है कि वकील तुम्हारे पक्ष में कुछ सफाई देगा, उसको सुनाया जाता है। चित्रगुप्त कहते हैं, यमराज कहते हैं चित्रगुप्त पढ़ के सुनाओ, तो उसको सुनाया जाता है ये है? और यमराज उसको दंड सुनाते हैं कि ये दंड है, उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता वकालत करने का, बेकार है। जितनी वकालत यहाँ सीखी है सब बेकार है, कुछ काम नहीं करेगी। यहाँ तो कोर्ट में खूब चलता चल जाता है, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा, सब हो जाता है। उधर नहीं चलेगा कुछ भी, वहाँ वकील भी मिलेगा नहीं आपको, कोई वकील नहीं मिलेगा है। तो मतलब इसके लिए तैयार रहना चाहिए है। अच्छा क्या हुआ, चित्रगुप्त ने यमराज को सुनाए उसके पाप कर्म। चित्रगुप्त स्तुतम दृष्ट्वा यमाया वेदयत तदा आबालत्वा तेन पुरा कर्मयन् दुष्कृतम कृतम। चित्रगुप्त बोले, बालकपन से जीवन भर कहीं कोई इसका पुण्य नहीं दिखाई दे रहा है, बालकपन से जीवन भर कहीं इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता है, सब पलट पलट करके देख रहे हैं, लिखा हुआ कुछ नहीं है। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन एक वर्ष में भी नहीं हो सकता, एक साल तक भी अगर पढ़ते रहे तो इसके पाप समाप्त नहीं होंगे, इतने इसने पाप किए हैं। नैवाश्य दृश्यते किंचिन आबाल्यात् सुकृतम कुचिन दुष्कृतम शक्यते वक्तुम वर्षेणापि न भास्करे। हे महाराज, ये दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है। चित्रगुप्त को डर नहीं लगता है कि बाद में चल करके कुछ उसके साथ में कुछ वो करेगा, झगड़ा करेगा कि मेरे बारे में क्यों बोला ऐसा। चित्रगुप्त को कोई डर नहीं वहाँ पर, इसलिए निडर होकर के बताते हैं, क्या ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इससे ये कल्प पर्यंत नरक में कष्ट पाने योग्य है। एक कल्प कितना होता है? 1000 चतुर्युगी का, 1000 चतुर्युगी, 4,32,00,000,000 साल, इतना समय जो है इसको नरक में यातना दी जानी चाहिए, 4,32,00,000,000 साल की। सोचिए जीवन काल कितना छोटा है, उसमें जो पाप हम करते हैं कितना लंबा जो है इसका वो मतलब यातना होती, कितनी लंबी यातना मिलती है सोचिए। जीवन काल कितना है? 50 साल 60 साल, है ना। इसमें इतना हम कर लेते हैं कि 4,32,00,000,000 साल तक नरक में पड़े रहे हैं। और कोई जमानत नहीं होगी, है रिश्वत कुछ नहीं चलेगी, है ना। तो फिर पाप मूर्तिरयम् दुष्टः केवलं दृश्यते विभो तस्मादा कल्प मर्यादं निर्ये परिपच्यताम्। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण सुना रहे हैं किसको? सत्यभामा को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भयंकर काल अग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने सेवकों से वज्र के समान वचन बोले। पापियों के लिए यम है और पुण्यात्माओं के लिए धर्म है, धर्मराज। तो यही पापियों को वो अपना बड़ा भयानक रूप दिखाते हैं, काल अग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने सेवकों से वज्र के समान वचन बोले। वज्रतुल्यम वचः क्रोधान यमा प्राह सुकिंकरान दर्शनान्नात्मनो रूपम तच्च कालाग्नि सन्निभम। उन्होंने कहा, हे प्रेतपतियो, प्रेतपति यमराज के जो सेवक हैं क्या कहलाते हैं? प्रेतपतियो, हे प्रेतपतियो, इसे अपने मुद्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। कुंभी पाक, है ना, वो भी 1000 किलोमीटर का जो है लंबा चौड़ा बर्तन होता है, उसके नीचे जो है प्रलय काल की अग्नि के समान आग जलती है और तेल जो है उसमें भरा हुआ खोलता रहता है, उसमें डाल देते हैं। और यातना शरीर है, नष्ट नहीं होता, ये कितना कष्ट होता है। ये शरीर हमारा जो है छूट जाएगा, उतनी यातना हम सहन नहीं कर सकते शरीर के द्वारा, वो यातना शरीर होता है तो नष्ट नहीं होता, लेकिन कितना चिल्लाता है, कितना कष्ट होता है, असीमित वर्णन नहीं किया जा सकता है कितना चिल्लाता है वो, है ना। तो कहा कि कुंभी पाक नरक में डाल दो, ये दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। किसने कहा? यमराज ने कहा। भू प्रेत पत्यस्तेनम वध्यमानम समुद्गरे कुंभी पाके छिपे 400 दुष्टा कलमसे दर्शनहा। तब मुद्गर से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर को मुद्गर मार मार के उसका सिर फोड़ दिया उन्होंने, यमदूतों ने, और उसको ले जाकर के प्रेतपति लेकर के तेल के औंटने की चिरचिराहट युक्त कुंभी पाक नरक में डाल दिया उन्होंने। चिर 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 तेल जो जब उबलता है ना तो चिर चिर की आवाज होती है, चिरचिराहट होती है, खोलता हुआ तेल है, उसमें डाल दिया उसको। ततो मुद्गर निर्भिन्न मूर्धानं प्रेत पूर्णयन् कुंभी पाके चतम छित्त्वा तैले कथन सम्दीते। कुंभी पाक में उस धनेश्वर के पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। अब यह आश्चर्य हुआ, वो तेल जो है उसके लिए शीतल हो गया जैसे प्रहलाद को डाला गया था, खोलते तेल में तो तेल ठंडा हो गया। यावन क्षिप्तस्य तत्रासो तावन शीतलताम्यजो कुंभी पाके यथा वहनी प्रहलाद क्षेपणात् पुरा। ये देखकर प्रेतपति ने विस्मित होकर ये वृतांत यम से जाकर के कहा कि महाराज, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, उसको डाल दिया तेल में लेकिन तेल तो ठंडा हो गया। तेल ठंडा नहीं हुआ था लेकिन वो जो है मतलब तलब नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, इसका मतलब तेल ठंडा है, उसके लिए तेल ठंडा है ना। खोलते तेल में किसी को डालें और वो चिल्लाए नहीं, तड़पे नहीं, है तो क्या है, उसको तेल ठंडा हो गया उसके लिए, है ना। तो यमराज को बताया। तन्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं प्रेतपा विस्मयान्विता वेगादागत्य तत्सर्वं यमाया वेदयन्तदा। यमराज प्रेत पति की बात सुनकर आह ये कैसी बात है ये कहकर उसे बुलाकर विचार करने लगे। निकलवाया उसको कलाहे से बाहर निकलवाया और बुलाकर के विचार करने लगे। यमस्तु कौतुकम दृष्ट्वा प्रेत पैश्चा निवेदितम आकिमेतन इति प्रोच्चे तमानी है विचारे यन। इसी समय नारद जी वहां आ गए। कौन आ गए? नारद जी वहां आ गए। यमराज ने उनका पूजन किया तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा। अब यमराज को भी समझ में नहीं आ रहेगी है ये सब क्या रहस्य है क्या हो रहा है क्या बात है इसका जो जो लिखित जो मतलब उसके कर्म है उसमें तो कुछ है ही नहीं इसका कुछ शुभ कर्म लेकिन ये हो क्या गया। तावदभ्यागतस्तत्र नारदा प्राय सत्वरम यमेन पूजिता सम्यक तम दृष्ट्वा वाक्यम ब्रवी। अब यहाँ पर देखिए कितना शिष्टाचार है कि यमराज कितने मतलब चिंता में थे। जैसे नारद जी आए तुरंत उनको बिठाया और उनकी पूजा की है ना। तो ये शिष्टाचार भी जो है मतलब बहुत सीखने लायक है समझना चाहिए है ना। और नारद जी ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा हे अरुण नंदन। किसको कहा? अरुण नंदन यमराज को। अरुण यानी सूर्य सूर्य के पुत्र। हे अरुण नंदन ये नरक भेजने योग्य नहीं है ये नरक भेजने योग्य नहीं है क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म कर लिया। नैवायम निर्यान भोक्तुम अहो हरुण नंदन यस्मादंते संजातम कर्मयन निर्व्यापहम। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन स्पर्श और संभाषण करता है तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। छठा भाग मतलब 16% कि नहीं कितना हुआ 16% मिल जाता है जो व्यक्ति पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन स्पर्श लेकिन दर्शन करें तो प्रसन्न चित्त होकर करें ऐसे नहीं करना तो फिर उल्टा हो जाएगा फिर उसके पाप मिल जाएंगे उसके पाप ले लोगे है ना। लेकिन प्रसन्न होकर के करते हैं है ना आश्चर्युक्त कौतुक है ना तो उल्टा हो जाएगा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं है ना। तो जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन स्पर्श और संभाषण करता है वो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। यद पुण्य कर्मिणाम कुरियान दर्शन स्पर्श भाषणम तथा सदंसम आपनोति पुण्यस्य नेतम नरः। अब ये पुण्य जो है यमराज के बही खाते में नहीं लिखा होता लेकिन उसको मिल जाता है आप समझ रहे हैं वहां चित्रगुप्त के खाते में नहीं आता है लेकिन उसको मिल जाता है। तो ये जो है मतलब बड़े मतलब सूक्ष्म बातें हैं ये धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसार किया है कोई संख्या नहीं है कितने लोगों को जो है इसने देखा है बातचीत की है हैं लेकिन दुर्भावना से नहीं किया दुर्भावना के साथ नहीं किया सद्भावना के साथ किया है। दुर्भावना रखते हैं तो उल्टा हो जाएगा है ना। कि ध्यान रखो कि आपके मन में दुर्भावना अगर है तो अच्छा है कि फिर दूर हो जाओ। हाँ ये धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसार किया है इसके पुण्य से इस उनके पुण्य का ही अंश भागी है तो सबका इसने कितना परसेंट लिया छठा अंश 16% सबके पुण्य का 16% लिया इसने तो बहुत हो गया तो बहुत हो गया। उनकी परिचर्या करने वाला परिचर्या भी की कुछ सेवा भी की इसने उनकी परिचर्या करने वाला ये संपूर्ण व्रत के अंश का भागी है। इस कार्तिक के व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है परिचर्या करस्ते साम संपूर्ण व्रत भागयम अते ऊर्जे व्रतो भुन भुन अते ऊर्जे व्रतोद्भुत पुण्य संख्या न विद्यते। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी भी पाप को भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। कार्तिके प्रतिनाम पुंसाम पातकानि महान्त्यपि तदहन्नात्मे महसा विष्णु सन् भक्तवत्सलः। अंत समय में इसको वैष्णव ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है। क्या अंत समय में तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है और नाम भी सुनाया है। अंदेज नर्मदा तो यस तुलसी मिश्रित स्वयं वैष्णव स्नापितो विष्णु नाम संस्थापितो पीच। अतएव दूर हो गए हैं पाप जिसके ऐसे ही धनेश्वर उत्तम गति पाने के योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है इससे नरक में जाने योग्य नहीं है। तस्मान निर्गत पापोयम संगतिम प्राप्त मरहति वैष्णवानुग्रही तस्मान नर्ये नैव पच्यताम। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना पड़ता है वैसे ही सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। आर्द्र शुष्क यथा पापैर नरिये भोग सन्निधि प्राप्यते सुकृत तन्वन तन्वन स्वर्गस्य सन्निधिस्तदाम। अतः आर्द्र पुण्य वाले यक्ष योनि में स्थित ये पापों का भोग दिखाने वाले नरक को देखकर मुक्ति पावे। इसको यक्ष का शरीर प्रदान किया जाए और नरक दिखा दो इसको। कितना अंतर पड़ गया मतलब नरक भोगने के बजाय इसको अब क्या करना है नरक दिखाना है। कितना फर्क पड़ गया सोचो कितनी रक्षा हो गई कितना पाप था उसका नरक दिखाना है। नरक देखना भी एक बड़ा मतलब वो है ना भयानक दृश्य होता है नरक का लेकिन दिखा दो इसको फिर भी कितना अंतर है हैं बच गया कितनी रक्षा हो गई उसकी हैं। उसको नरक देख करके इसको निकाल दो और यक्षी का शरीर इसको दे दिया जाए। तस्मान आर्द्र पुण्यो ही यक्षियों ने स्थित स्वयं विलोक निर्यान सर्वान पाप भोग प्रदर्शकान। श्री कृष्ण बोले ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने के इच्छा से फिर बुलाया। इसको किसको बुलाया यमराज ने धनेश्वर को बुलाया अपने दूत के द्वारा नरक दिखाने की इच्छा से कि भाई तुम बच गए बहुत रक्षा हो गई तुम्हारी है? अच्छा इत्युक्त्वा गतवती नारदेश सौरे तद्वाक्य श्रवण विबुद्ध तत्सुकर्मा तम विप्रम पुनर्नियत सुकिंकरेण तान सर्वान निरगणान प्रदर्शयिष्यन्। श्री कृष्ण बोले तब यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेत पति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। ततो धनेश्वरम नीत्वा निर्यान प्रेत पो ब्रवीन दर्शयन्स्तं तो तान सर्वान यमानुज्ञा करस्तदा। प्रेत पति बोला हे धनेश्वर ये भयानक नरक हैं इन्हें देखो जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पकाए जाते हैं। पश्येमान निर्यान घोरान धनेश्वर महाभयान येषु पापेकरा नित्यं पच्यन्ते यम किं करे। भयानक दर्शन वाला ये तत्त्व बालू का नरक है जिसमें अंत समय जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। देखो कितना चिल्ला रहे हैं तपी हुए बालू में उनको डाला गया है। तत्त्व बालुका नामयम नरियो घोर दर्शना यस्मिन् नेते दग्ध देहा क्रंदन्ते पापकारिणः। भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागत को जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे यहाँ नरक में अपने कर्म द्वारा पचाए जाते हैं। अतिथि इन वैश्वदेवान्ते छुक्षा मागतां चित्ये न पूजयन्ति ते येते पच्यन्ते स्वेन कर्मणा। गुरु अग्नि ब्राह्मण गौ वेद का जो पैर से ताड़न करते हैं, पैर मारते हैं अपना, वे मनुष्य जले हुए पांव वाले यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तत्व बालू का पैर मारा और दिखाते हैं कि पैर नहीं मारा, दिखाते मुझे पता नहीं चला, पैर मार दिया किसी को, है ना। तो वो सब नोट होता है, सब कर्म वहां लिखा जाता है कि पैर मारता है और दिखाता है कि मुझे पता नहीं है, मैंने पैर नहीं मारा, दिखाता है ना, उसका लिखा गया है नरक। और उसको जो है वहां तपी बालू में इसको चलाया जाता है, जल जाते हैं इसके पैर। गुर्वग्नीन ब्राह्मणानन गांश्चा वेदान मूर्धा विसिक्त कान ताड़यन्ति पदायेव ते निर्दग्धान गृहस्थे। नरक के छह भेद हैं, ये नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधता मिश्र नामक ये दूसरा बड़ा नरक है। देखो सुई के समान और घोर मुख वाले कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। ये नरक भी छह प्रकार का है। पराए मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते गीध आदि पक्षियों द्वारा बचाए जाते हैं। तीसरा ये प्रकच नामक घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य प्रकच अर्थात आरे द्वारा चीरे जाते हैं। ये क्रकश नामक नरक भी असी पत्र वन आदि भेद से छह प्रकार का है। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं वे पकाए जाते हैं। जो प्यारी वस्तु और औरों जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं वे मनुष्य भी इसमें पचाए जाते हैं। असी पत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़ियों के भय से भागे एवं चिल्लाते हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का ये नरक महाघोर चौथा नरक है। देखो नाना प्रकार की फांसियों से बांध कर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी छह भेद हैं। कूट सालमली नामक इस पांचवें नरक को देखो, इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री में रथ पराया द्रोह करने और पराया द्रव्य लेने वाले पापी यम की यातनाओं द्वारा छह प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्त कुए अर्थात रुधिर और पीप भरा है ऐसा इस छठे उल्बण नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। यहाँ अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले निंदा और चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। ये भी दुर्गंध आदि भेद से छह प्रकार का है। घोर दर्शन वाला ये सातवां कुंभीपाक नरक है। हे धनेश्वर, ये तेल आदि वस्तुओं के भेद से छह प्रकार का है। इसमें महापापी नरों को यमदूतों के द्वारा दंड दिया जाता है अर्थात तेल आदि में औटाया जाता है। हजारों वर्ष पर्यंत इनमें पापी इनमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेद वाले रौद्र नरक को देखो, बिना कामना के जो पाप होता है वो सूखा कहलाता है और जो कामनाओं से पाप होता है वो गीला पाप कहलाता है। ऐसे गीले सूखे भेद से पाप के दो प्रकार होते हैं। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं। अपकीर्ण पांत यमनी निका जाति ध्वंस कर उपपातक अति पाप और महापाप, ये सात प्रकार के पाप हैं। इन सातों के करने पर प्राणी सात नरकों में बचाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, सुन रहे सब लोग, तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था उसी से तुम्हारे पुण्य से नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गया। ये भी सप्तसु पच्यन्ते नरेषु यथाक्रमं कार्तिके पृथ्वी कुम्भेर यत् संसर्गो भवत्तव। यक्षों के लोक में ले गया, वो यक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर धन यक्ष इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। कितना उसको जो है मतलब संगति मिल गई, कुबेर का अनुचर धन यक्ष नाम का। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने तीर्थ बनाया था। ऐसा प्रभाव वाला ये कार्तिक मास मुक्ति को देने वाला और भक्ति देने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाला भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। धनदस्यानुगम सोयम धनयक्ष हेतु विश्रुताम यदाख्या करो तीर्थम अयोध्यायाम तु गाधिजहाम एवं प्रभाव खलु कार्तिकेयो मुक्ति प्रतो भुक्ति करस्य यस्मात् योहंत ने कार्यत पातकानि कर्तु संदर्शन तोपि मुक्तिम। तो बहुत सुंदर कथा हुई है। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना था पहले? किसी ने सुना था? तो जिन्होंने सुना है तो बार बार सुने, क्योंकि इसमें रस ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही मिलता रस। ठीक है, तो अब एक आध प्रश्न कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, आप बोलिए।
जोर से बोलिए।
हाँ,
मतलब उसे पता है उसने बहुत पाप किया है,
किसी ने बहुत पाप किया उसको पता है और उसको पता है कार्तिक आ गया। हाँ,
पता है कार्तिक में ऐसा करने से बहुत सारा पुण्य भी मिलता है।
हाँ, इसके बल पर नहीं, फिर वो जो है अपराध हो जाएगा ना। कोई व्यक्ति अगर कार्तिक के बल पर पाप करता है तो फिर वो जो है वज्रलेपम भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है नामाभास, जिस नामाभास को अजामिल ने नामाभास किया तो उसकी रक्षा हो गई, लेकिन नाम अपराध करने से रक्षा नहीं होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से कार्तिक का आभास किया उसने, यदि कार्तिक का अपराध करते हैं तो रक्षा नहीं होगी। सब लोग उठ के जा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ समाप्त हो रहा है क्लास। जिनको प्रश्न पूछना है अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव यशोदा दामोदर की जय। हरे